इधर काल की बेटी थी जरा, वो एक बार मेरे पास आई। नारद जी बता रहे कि वो मेरे पास आई कि नारद बाबा तुम हमसे विवाह कर लो। हमने कहा अरे तू तो जरा है, माने बूढ़ा बुढ़ापा है, तेरे साथ विवाह कर लूंगा तो मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये वीणा बजा बजा करके लोगों को भगवान का नाम सुनाता हूं, ये फिर कैसे सुनाऊंगा, मैं तो तेरे साथ विवाह नहीं करता। तो मुझे जाकर साफ दे दिया कि जाओ तुम एक जगह नहीं ठहरोगे। मैंने कहा बड़ी अच्छी कृपा है, एक जगह रहेंगे तो मोह हो जाएगा, तुमने वरदान दे दिया, तुमने साफ दिया, हम इसको वरदान ही मांग लेते हैं। मैंने तो उस जरा को पकड़ा नहीं और वो जरा चली गई एक यवनों का स्वामी था उसके पास, उसका नाम था भय। भय के पास गई कि भाई तुम है मुझे अपनी स्त्री बना लो। भय ने कहा देखो स्त्री तो नहीं बनाऊंगा, अपनी बहन ही बनाऊंगा। तो देखो तुम और हम एक काम करें, क्या ये जो पुरंजन है इसके आप नगर के ऊपर तुम भी आक्रमण कर दो, और मेरा एक भाई प्रज्वार है वो भी आक्रमण करे, तुम भी चले जाओ और प्रज्वार भी चला जाए और मैं फिर पीछे से आता ही हूं। अच्छी बात है। अब वो पुरंजन के ऊपर आक्रमण कर दिया प्रज्वार ने भी और उधर जरा ने भी। वो बेचारा पांच फण वाला सांप खूब लड़ता रहा, लड़ते 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 अंत में उस सांप ने कह दिया कि देखो पुरंजन जी अब हमको बहुत लंबा समय हो गया लड़ते लड़ते, अब हम लड़ नहीं सकते, जरा हमारे पर ऐसी कृपा करो कि हम जो है अब लड़ाई नहीं कर सकते, आप अपना कोई दूसरा बंदोबस्त कर लो। क्या भाई अब तुम ही देखो हम तो क्या करें। वो घबराया कि अब क्या होगा अब क्या होगा। इतने में प्रज्वार तो नगर में आ गया। अब वो जलने लगा बुरी तरह से, जरा भी आ गई, बुढ़ापा आ गया। अब वो मरने लगा कि ओहो मैं मर जाऊंगा तो पुरंजनी का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे बेटा बेटी का क्या होगा। इस प्रकार से वो रोने लग गया। रोते 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 वो भय नाम का जो यवनेश्वर था वो आ गया और उसके प्राण लेकर के चला गया। अब वो चूंकि स्त्री का चिंतन करते करते मरा था और उसने बहुत से यज्ञ में पाप किए थे तो जितने पशुओं को मारा था उन सब ने उसका बदला लिया। तम यज्ञ पशुओ अनेन संज्ञप्ता ये अदयालुना कुठारे चिच्छिदु क्रुद्धा स्मरंतो अमीव मंस्यतत। कहते हैं इस प्रकार से सब ने उनका बदला ले लिया। फिर वो स्त्री का चिंतन करता करता मरा था तो अगले जन्म में वह विदर्भ देश में पैदा हुई। उसका नाम वो वैदर्भी रखा और उसका विवाह फिर मलयध्वज के साथ हुआ। मलयध्वज के साथ विवाह हुआ, फिर उससे सात लड़का पैदा हुए। बहुत लंबे समय तक पति के साथ रही और फिर पति ने अपना राज्य था पुत्रों को दे दिया। अपने पति के साथ ही वो जंगल में आ गई, भगवान का ध्यान किया और इधर पति देव उसके नष्ट हो गए, मर गए। तो वह भी पति के साथ मरने लगी, बहुत चिल्लाई कि मेरे पति चले गए, बहुत बिलाप की, चिता जगा करके वो उसमें कूदने ही वाली थी। इतने में ही वो उसका पुराना मित्र था वो आया। मित्र आया, उसने कहा कि अरे अरे कौन हो तुम, जानते हो हमको? कि क्या जाने हम तो आपको नहीं जानते। अरे तुम नहीं जानते तो यही तो कह रहा हूं, तुम नहीं जानते हम तुमको जानते हैं, तुम कौन हो? कि हम तो इस मलय ध्वज की पत्नी है, विदर्भ देश में पैदा हुई है, ये मर गए, हम पांडे देश में विवाहित हुए हैं तो ये मर गए तो इनके पीछे मैं भी मरना चाह रही हूं। तुम्हारा परिचय इतना ही नहीं है तो और हमारा परिचय क्या है? तुम मुझे याद, तुम मुझे नहीं जानते? कि हम तो आपको नहीं जानते। अरे तुम हमको नहीं जानते, हम जानते हैं, तुम और हम दोनों मान सरोवर के हंस हैं। देखो तुम्हारा रूप रंग हमारे साथ मिलता है, तुम और हम दोनों साथ साथ रह रहे थे, साथ साथ घूम रहे थे, घूमते घूमते तुम तो आकर के एक महल में पुरंजनी के साथ रह गए। हमने बहुत हल्ला किया कि पुरंजन ठहरो ठहरो, कहां जा रहे हो पुरंजन, ठहरो ठहरो, लेकिन तुमने हमारी बात सुनी नहीं, तुम तो उस पुरंजनी के साथ महल में चले गए। और उसके बाद जब तुम मर गए तो तुम कन्या, तुम लड़की बनकर के आए और स्त्री बनकर के आए और मलय ध्वज के साथ तुम्हारा विवाह हुआ। तो देखो न तो तुम पुरुष हो और न तुम स्त्री हो, वास्तव में तुम हमारे ही स्वरूप वाले हो। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। तुम्हारे में और हमारे में ऋषियों ने लेश मात्र भी अंतर नहीं देखा है। इस बात को सुनकर के वो बहुत प्रसन्न हो गई, कहा कि अरे न तो मैं स्त्री हूं न मैं पुरुष हूं, मेरा रूप ही अलग है। बड़े प्रसन्न हो गई वो। एवं समान सो हंसो हंसे न प्रतिबोधित है स्वस्थ तद्य विचारे न नष्टमाप है पुनः स्मृति। फिर उसको याद आ गई क्या हो, हमारा तो संबंध और ही है, हमारा जगत के साथ संबंध नहीं है। तो राजन मेरी कथा का मतलब समझ गए क्या? नहीं महाराज, हमने तो आज तक सत्संग किया ही नहीं, हमने तो खाओ पियो मौज उड़ाओ इसके अलावा कुछ भी नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते हो? क्या अरे वो पुरंजन तुम हो, वही पुरंजन, जितने जीव हैं सब पुरंजन हैं, और अविज्ञात सखा कौन? वो परब्रह्म परमात्मा है। इस परमात्मा की जीव के साथ सदा ही मित्रता है, और मानसरोवर माने ये मन रूपी जो मानसरोवर है इसके अंदर दोनों सदा ही सदा साथ रहते हैं, लेकिन बुद्धि रूपी पुरंजनी के साथ मिलकर के ये ऐसा विवेक भ्रष्ट हो गया कि यह परमात्मा को भी भूल गया और अपने आप को भी भूल गया, और इस शरीर के अंदर आ गया, बुद्धि को पकड़ लिया और अब मैं ही सब कुछ हूं। ये भूख प्यास किसको लगती है भाई? ये प्राणों को लगती है। ये जागना सोना उठना ये किसका होता है? बुद्धि का होता है। नींद बुद्धि को आती है, जागती बुद्धि है, और स्वप्न भी बुद्धि में ही होते हैं, लेकिन मनुष्य देखता है कि मैं जाग रहा हूं। ये क्या है? उस पुरंजनी के साथ आ सकती है। और ये नौ दरवाजे हैं, ये शरीर के नौ दरवाजे हैं, तो तरह तरह के विषयों की ओर ये जाता है। हाथ और पैर ये अंधे वहां पर काम करने वाले हैं, इनके सहारे से वो जाता आता है। और ये जो मंत्री है जो कभी हर्ष और शोक को देने वाला, ये और कुछ नहीं, ये मन ही है। मन में कोई चीज कभी अच्छी लग जाती है कभी बुरी लगती है। धन सदा एक जैसा अच्छा नहीं लगता, हमारे पास खूब धन हो ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन कभी कोई पूछने वाले आ जाए तो सोचते हैं अरे धन नहीं हो तो बड़ा अच्छा है, तो मन ने पसंद नहीं किया तो हमारे पसंद नहीं रहा, मन ने पसंद कर लिया तो हमारे पसंद हो गया। ये काल कन्या क्या है? काल है, यही जरा अवस्था है। और ये गंधर्व और गंधर्वियां कौन है? 360 दिन और 360 रात्रियां यही गंधर्व और गंधर्वियां है। ये पांच प्राण है, यही वो पांच फण वाला सांप है। इस कारण से भाई आप इस बगीचे में ज्यादा दिन नहीं रह सकते, इस महल में ज्यादा दिन नहीं रह सकते, यहां जैसा कर्म करोगे भोगना पड़ेगा। मनुष्य देखता है कि ये काम कर लोगे सुखी हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा राजन, सिर का भार कंधे में रख लिया और कंधे का भार सिर पर रख लिया, लेकिन भार तो अपने पर ही है। इसलिए अपने स्वरूप को पहचानो, भगवान वासुदेव में भक्ति करो, संत महात्माओं के जो वचन है उनको ध्यान से सुनो और अपने स्वरूप को प्राप्त करो, तभी तुम संसार के विषयों से ऊपर उठ सकते हो। विचार करो कि एक बहुत सुंदर बगीचा है, उस बगीचे में हिरण है, वो घास खा रहा है, साथ में उसके हिरणी भी है, और वहीं पर एक भेड़िया भी बैठा हुआ है। एक हिरण उसी भेड़िए ने मार दिया और वो खा रहा है, फिर भी वो हिरणी के साथ में उस हरे हरे घास को खा रहा है, और पीछे एक शिकारी है, उस शिकारी ने कान तक कस करके अपना बाण छोड़ दिया है, फिर भी वो हिरण मस्ती से चर रहा है। ऐसी तुम्हारी स्थिति हो रही है संसार रूपी बगीचे में। ये तरह तरह के विषय भोग हैं, ये विषय भोग लोगों को प्रिय लग रहे हैं, ये फूल के समान प्रिय लगते हैं, और ये जीव है हिरण के समान इन विषयों की तरफ पीछे लगा हुआ है। काल ने यहाँ पर एक हिरण को मार दिया, अर्थात लोगों की मृत्यु अपने सामने दिखती है, और हमारी मृत्यु कब होने वाली है? बिल्कुल इसका बाण छूट चुका है, फिर भी संसार की मटर गस्तियों में आनंद करता है, इससे बढ़कर और क्या इस ये विवेकहीनता होगी? राजन अब तुम उठो जागो और अपने कल्याण का मार्ग ले आओ, ये संसार इस बात के लिए नहीं मिला जिस बात में तुम अपना समय लगा रहे हो। राजा ने कहा महाराज आज मेरे आपने नेत्र खोल दिए, परंतु मुझे ये पता नहीं चला अभी तक कि जिस शरीर से हम कर्म करते हैं वो शरीर तो मर जाता है, फिर फल कौन भोगता है? कि बस यही तो बात है, शरीर से तुम कर्म नहीं करते हो बाबा, इस शरीर को कर्म करने के लिए भीतर से कोई एक प्रेरणा देने वाला है, और वही शरीर से प्रेरणा देकर के शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगता है, वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का बना हुआ, माने 5 प्राण, 10 इंद्रियां, एक मन और एक बुद्धि, इस प्रकार से 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर है। ये तो स्थूल शरीर है, ये तो इंद्रियों के काम करने की जगह है, शरीर को थोड़ी कोई पाप लगता है। इस शरीर को लेकर के जो पाप में इसको लगाने वाला है, पाप का फल भी वही भोगने वाला है। तो जैसे सोते हो गहरी नींद में, हाँ सोते हो और स्वप्न देखते हो, तो ये शरीर तो यही रहता है, लेकिन स्वप्न का एक अलग शरीर बनता है कि नहीं बनता है? वो कौन बनता है? बस ऐसे ही ये शरीर छूट जाता है तो आगे कर्मों के अनुसार नया शरीर मिल जाता है। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार भाई ऐसे जन्म लेना पड़ता है और उसका कर्मफल भोगना पड़ता है। इसलिए जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मोटर से एक्सीडेंट हुआ तो मोटर को दंड नहीं मिलता, कैद खाना मोटर को नहीं होता, उसके ड्राइवर को होता है। इसी प्रकार से शरीर का संचालन करने वाला, शरीर का उपयोग करने वाला जो है उसी को ही दंड मिलता है। वो उपयोग करने वाले राजन तुम खुद हो, मैं खुद हूं। जिन जिन का शरीर अपना माना है वे उसका उपयोगता उपभोक्ता है, उसका फल भी उन्हीं को ही मिलता है। प्राचीन वर्य ने कहा महाराज मेरी आंखें खोल दी, अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा, भगवान का भजन करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं इधर प्रचेताओं ने शंकर भगवान के आदेश से तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हो गए आठ भुजा से। भगवान ने कहा बेटा कोई वरदान मांगो, तो कहने लगे महाराज वरदान हम क्या मांगे, आपके दर्शन हो गए, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जब जब भी हम अपने कर्मों से यहाँ पर भूले भटके फिरते रहे तो महाराज हम संतों के महात्माओं के संग में रहे, इसी में ही हम अपना कल्याण देखते और कुछ नहीं देखते, इसलिए महाराज हमको तो आपके संतों का संग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको आप यही चीज दीजिए। भगवान ने कहा देखो ऐसा करो, प्रमलोचना नाम की एक अप्सरा थी, उसने कंडू ऋषि की तपस्या का भंग करने के लिए तरह तरह के उपाय किए थे, इससे उनके मारिसा नाम की कन्या हुई है, उसके साथ जाकर तुम विवाह करो। और देखो मेरा वरदान है कि एक स्त्री के तुम 10 पति रहोगे तो भी तुम्हारा आपस में बड़ा प्रेम बना रहेगा। इस प्रकार से भगवान ने उनको आदेश दिया, भगवान वहां से अंतरित हो गए और फिर इसी प्रचेता के यहाँ मारिसा के साथ विवाह होने पर दक्ष प्रजापति ने जन्म लिया। दक्ष प्रजापति ने देखा कि मेरा बकरे का मुंह है ये अच्छा नहीं लगता है, लोग कहेंगे तुम्हारे जवाई ने ऐसा रूप बना दिया, तो अपने दूसरी जगह जाकर जन्म ले लो, पिछली बात हम भूल जाएं। तो दक्ष प्रजापति ने जन्म ले लिया था। इधर प्रचेताओं ने दक्ष को राजा बना दिया, प्रजापति बना दिया और फिर वापस पश्चिम दिशा में जाजली के आश्रम में जाकर तपस्या करना चालू किए। वहां पर नारद जी महाराज आए। नारद जी ने कहा देखो भाई आप लोगों के जो ये भगवान की तरफ झुकाव को देखता हूं तो इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। नारद जी से पूछा कि महाराज उस समय में तो भगवान शंकर ने भी हमको उपदेश दिया था, आप भी हमको उपदेश दीजिए। नारद जी कह रहे देखो भाई सब बात की सार बात बताता हूं, जन्म तभी सफल है, कर्म तभी सफल है, विद्या तभी सफल है, तपस्या तभी सफल है, वाणी तभी सफल है, बुद्धि तभी सफल है जब हम सर्वात्म भाव से भगवान के शरण स्वीकार हो जाते हैं। जिस प्रकार यथा तरोर मूल निषेचनेन वृक्ष की जड़ में दिया हुआ पानी सारे वृक्ष को हरा भरा कर देता है, इसी प्रकार से एक भगवान की आराधना करने पर सारे संसार की पूजा हो जाती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सूर्य से जैसे किरणें पैदा होती है और फिर सूर्य में लीन हो जाती है, ऐसे ही संसार में प्राणी पैदा होते हैं भगवान से और भगवान में लीन होते हो जाते हैं। तो उन्हीं भगवान की शक्ति को सब जगह देखें, भगवान को ये अपने आप में अर्पित कर देवे। जिसने अपनी तृष्णाओं का नाश कर लिया है वो भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं और भगवान अधनों के प्रिय है, अकिंचनों के प्रिय है। जो धनादि का अभिमान करने वाले हैं उनसे भगवान डरते रहते हैं और जो धनादि में प्रेम नहीं करने वाले उनसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। भगवान को लक्ष्मी भी इतनी प्यारी नहीं लगती जितने उनको भक्त प्यारे लगते हैं, इसलिए भक्ति करो। ऐसा कहकर के ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में चले गए और उन्होंने भगवान का ध्यान किया और वे नारद जी की बात सुनकर के प्रचेतागण भगवत धाम को प्राप्त हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार की ये बात सुनकर के विदुर जी के मन में आया कि ओहो हम लोग कैसे हैं, भाई भाई आपस में लड़े, अरे कौरवों का और पांडवों का युद्ध भाइयों का ही तो युद्ध था और इधर ऐसे भाई हुए, 10-10 भाई थे एक साथ रहे, हम 3 भाई थे, बेचारे पांडु का तो पहले देहांत हो गया, धृतराष्ट्र हमारी बात माने नहीं, चलो धृतराष्ट्र का कल्याण करें। तो विदुर जी महाराज मैत्री जी के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके वापस वे हस्तिनापुर चले गए और वहां जाकर के उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर धृतराष्ट्र को जगाया और जगा करके उन्होंने धृतराष्ट्र को कल्याण में लगाया। अब 5वां स्कंद प्रारंभ होता है। 5वें स्कंद में राजा प्रश्न करते हैं कि महाराज प्रियव्रत ने ये शादी विवाह क्यों किया, ये तो सब आसक्तियों से मुक्त थे फिर गृहस्थाश्रम में क्यों चले गए, ये आप हमको बताइए। आप थोड़ी देर की बात हो रहे भाई, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भाई भगवान के चरणारविंदों में जो प्रेम करने वाले हैं उनका गृहस्थ आश्रम में मन नहीं लगता है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रियव्रत नारद जी के शिष्य थे, उन्होंने नारद जी से अध्यात्म ज्ञान लिया था। पिता मनु ने बहुत कहा कि बेटा तुम राज्य संभालो, लेकिन उनके मन में राज्य करने की इच्छा नहीं थी। इतने में ही आकाश से ब्रह्मा जी आए हंस पर बैठे हुए, उन्होंने आकर उपदेश दिया कि देखो प्रियव्रत, तुम क्या समझ करके संसार का पालन नहीं करना चाहते, गृहस्थ में क्यों नहीं जाना चाहते कल्याण के लिए? अरे कल्याण में गृहस्थ कहां बाधक है, कल्याण में बाधा तो देने वाला अपना मन होता है। यदि हमारा मन जीता हुआ है तो चाहे गृहस्थ में रहो और चाहे संन्यास में रहो, चाहे राज्य में रहो, चाहे जंगल में रहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। और यदि हमारा मन वश में नहीं है तो चाहे कितने ही एकांत में चले जाओ, मनीराम वहां भी संकल्प की दुनिया बना बनाकर तुमको फंसा देगा। इसलिए भाई यदि अपने इंद्रियों के ऊपर काबू करना है तो गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, ताकि उचित भोग भोगने से मनुष्य के मन में स्वाभाविक वैराग्य होगा। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, धर्म पूर्वक विषय का सेवन करता है उसको निश्चित वैराग्य होता है। तुम और सब भगवान के संकल्पों में बधे हुए बेटा, इसलिए जाओ तुमको गृहस्थ आश्रम में रहना है। ब्रह्मा जी की आज्ञा हो गई। अब बिचारे क्या करते, उनका प्रजापति विश्वकर्मा की बेटी थी भरिष्मती, उसके साथ विवाह हो गया। विवाह होने से उनके 10 लड़का पैदा हो गए और फिर उन्होंने पृथ्वी का शासन किया। पृथ्वी का शासन किया तो मन में एक ही बात थी कि भाई हमारी पृथ्वी पर कहीं अंधेरा रहता है, कहीं प्रकाश रहता है, तो सारे पृथ्वी पर प्रकाश रहना चाहिए। ऐसा विचार करके वे सूर्य की ओर चले, तो वे रथ को लेकर के चले तो पृथ्वी के अंदर 7 द्वीप हो गए। 7 द्वीप हो जाने से 7 बेटों को उन्होंने 7 राज्य दे दिए। तो पहले 7 द्वीप बताते हैं, जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। द्वीप उसको बोलते हैं जिसके चारों तरफ समुद्र रहता है और बीच में जो पृथ्वी का भाग होता है उसको द्वीप बोलते हैं। तो 7 समुद्र हो गए, खारे पानी का समुद्र हो गया, ईक के रस का हो गया, और सुरा का समुद्र हो गया, घृत का समुद्र हो गया, दूध का समुद्र हो गया, दही का समुद्र हो गया, मन छाछ का समुद्र हो गया और शुद्ध जल का समुद्र हो गया, 7 ही समुद्र हो गए। अब इस प्रकार से उनकी इधर आयु पूरी होने लगी, तब मन में विचार किया कि ओहो हम तो फालतू ही यहाँ पर अपना प्रयत्न किए, भगवान का भजन करते तो हमारा समय बड़ा सार्थक होता। तब उन्होंने जम्बू द्वीप में अग्निंद्र को स्थापित कर दिया और दूसरे द्वीपों में दूसरों को स्थापित कर दिया और स्वयं भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। जम्बू द्वीप के राजा बने अग्निंद्र। अग्निंद्र ने तपस्या की कि भाई हम तो ब्रह्मा जी कहेंगे उसी के साथ विवाह करेंगे। तब एक पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा थी, उसके साथ विवाह हुआ तो उनके 9 लड़के पैदा हुए, नाभि वर्ष, किम पुरुष, हरिवर्ष, इलावर्त, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमाल, ये 9 उनके लड़के पैदा हुए। तो जम्बू द्वीप के 9 विभाग कर दिए और 9 विभाग करके और 9 को 9 शासन दे दिए और स्वयं अंत में भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चले गए। सबसे बड़ा जो नाभि था वो नाभि के कोई लड़का नहीं था, तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ करने पर भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट हो गए तो ब्राह्मणों से भगवान ने कहा, यजमान से भी कहा कि बोलो भाई आप लोग कोई हमसे वरदान मांगो। तो सब बड़े चतुर थे, वो सब ने कहा कि महाराज हम क्या मांगे, आप मिल गए, हम तो यही मांगते हैं कि उठते बैठते छींकते चलते फिरते फिसलते आपके नाम को हम उच्चारण कर लेवे, यही हम आपसे वरदान चाहते हैं। दूसरा वरदान यह है कि हमारे नाभि के कोई लड़का नहीं है, आप कृपा करके अपने समान कोई लड़का दे दीजिए। भगवान ने कहा भाई इसमें तो आपने हमको ठग लिया, हमारे समान तो कोई है नहीं, हमारे समान तो हम ही है, चलो हम ही इसका लड़का बनकर के आएंगे। तो फिर भगवान ने नाभि के यहाँ जन्म लिया, उनका नाम ऋषभ देव जी रहा। ऋषभ देव जी बड़े विचित्र थे, इनकी ऐसी विचित्र स्थिति थी, इंद्र भी इनके साथ में स्पर्धा करता था। कहते इंद्र ने एक बार ऋषभ देव जी के शासन में बरसात नहीं की, तब योग के द्वारा ऋषभ देव जी महाराज ने वर्षा करवा दी, तब इंद्र भी हार गया और अंत में इंद्र ने अपनी कन्या के साथ में इनका विवाह कर दिया। इसलिए उनके 100 लड़के पैदा हुए और इसमें 9 तो बड़े योगेश्वर हो गए, 81 थे वे, 81 के 81 कर्म कांड करके ब्राह्मण हो गए। देखो इन्हीं के लिए बात आएगी, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण हो गए। 81 जायंतेया पितुरादेश करा महाशालिना महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बबूबू, ये ब्राह्मण हो गए। अब रहे बाकी दस, दस में भरत सबसे बड़े थे। कहते हैं नौ रह गए, नौ दस रहे तो भरत तो सबसे बड़े थे और उनके साथ में नौ भाई और थे। तो ऋषभ देव जी ने अपने सब बेटों को बुलाकर उपदेश दिया कि भाई देखो ये मानव शरीर मिला है, ये भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है, मानव शरीर मिला है तो ये मुक्ति का दरवाजा है। अतः मनुष्य को भगवान के साथ प्रेम करना चाहिए, अपने स्वरूप की उपलब्धि करनी चाहिए और संत महात्माओं का संग करना चाहिए, एकांत सेवन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सब जगह भगवत भाव रखना चाहिए और ज्ञानाग्नि के द्वारा अपने कर्म बंधन को काट देना चाहिए। और आप सब लोग भाई भाई बड़े प्रेम से रहना, भरत को राजा बना देना और इसी की आज्ञा में आप लोग रहना। इस प्रकार से भरत को राजा बना करके ऋषभ देव जी महाराज सब कुछ राज्य वगैरह छोड़ करके ब्रह्मावर्त क्षेत्र से चले गए, जंगलों में रहते थे, जड़ की तरह से अंध की अंधे और जड़ांध की तरह से मूक की तरह से बधिर की तरह से पिशाचर्या के अनुसार रहते थे। जंगल में पड़े रहते, उनके मलमूत्र की बहुत दूर तक सुगंध जाती थी, ऐसे वे बड़े योगी थे। लेकिन इनके पास में कई सिद्धियां आई, उन्होंने सिद्धियों को उपयोग में नहीं लिया। कई की ऐसी सिद्धियां है, वैयास मनोजब माने पक्षी की तरह उड़ सकते थे, मन के समान वेगशाली होकर बहुत दूर तक जा सकते थे, लेकिन इन्होंने सिद्धियों का आदर नहीं किया। महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि क्या बात है महाराज, सिद्धियों का आदर क्यों नहीं किया? कि भाई इस मन का कोई विश्वास नहीं है, इस मन के साथ विश्वास नहीं करना चाहिए, मन पर कब यह हमको धोखा दे जाए। इसलिए जो भी कोई साधक है या सिद्ध है वे सिद्धियों से दूर रहते हैं, वे जंगलों में रहने लगे, कर्नाटक क्षेत्र में रहे और वहां रह करके फिर अंत में अपने मुंह में पत्थर ले लिया, उन्माद की तरह से उन्मुक्त उन्माद अवस्था में जैसे मनुष्य रहता है ऐसे रह करके वे जंगलों में फिरते रहे। फिर जंगलों में आग लग गई, उसी के अंदर उनका शरीर भस्म हो गया। इन्हीं ऋषभ देव जी के आचरणों को लेकर एक अर्हत नाम का राजा होगा जो कलयुग के अंदर तरह तरह से अधर्म फैलाएगा, वह वेद का खंडन करेगा, ब्राह्मणों का खंडन करेगा, यज्ञ का खंडन करेगा, स्नान वगैरह की कोई उनके क्रियाएं नहीं रहेंगी, आचमन वगैरह वे नहीं करेंगे और किसी प्रकार की पवित्रता नहीं रहेगी। जब कलयुग के अंदर अधर्म फैलेगा तो इस प्रकार से ये वेद विदूषक लोग बहुत अधर्म को फैलाएंगे। जो भी हो, आज जो समुद्र पर्यंत जो धर्म का संचरण हो रहा है इसमें ऋषभ देव जी महाराज का बहुत बड़ा हाथ है। ऋषभ देव जी महाराज हमारे परम गुरु है और उन्होंने उनके जो विशुद्ध चरित्र है उनको सुनने से लोगों के मन में भगवान की भक्ति का उदय होता है। राजन मैं क्या बताऊं, आपके वंश के अंदर भगवान ने बहुत बड़ी भारी सेवा की है, सब कुछ उनको दिया है, लेकिन कभी भी भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुमको भक्ति देता हूँ। भक्ति ऐसी चीज है कि जिसको मांगने पर ही भगवान देते हैं, अपनी तरफ से भक्ति नहीं देते हैं, कारण अगला व्यक्ति क्या पता भक्ति का दुरुपयोग कर लेगा। तो अस्त्वेव मंग भगवान भजता मुकुंदो मुक्तिम ददाति, मुक्ति दे सकते हैं लेकिन न भक्ति योगम, अपनी तरफ से भक्ति नहीं देते हैं, भक्ति तो भक्त मांगता है तब देते हैं। ऋषभ देव जी महाराज के विषय में क्या बतावे, वे अपने अनुभव के द्वारा अपने स्वरूप में स्थित थे, इसलिए संसार की कोई तृष्णा उनमें नहीं थी और चिरकाल तक सोए हुए इस जगत को जगाने के लिए जो उन्होंने ज्ञान दिया है, करुणापूर्वक जो उन्होंने चर्या फैलाई है, ऐसे ऋषभ देव जी महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ।
भगवत प्रीत्यर्थ कही जाने वाली श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत आज की कथा भरत उपाख्यान से प्रारंभ हो रही है। यह निर्णय हो चुका है कि श्रीमद् भागवत के अधिकारी कौन हैं, भागवत के वक्ता और श्रोता को कौन सा साधन अपनाना चाहिए। जिस सृष्टि में हम लोग रह रहे हैं उसके मूल कारण कौन हैं और इस सृष्टि में वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक कामना क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है और मुक्ति क्या है, इन सब बातों का पहले स्कंद से लेकर चौथे स्कंद तक बड़े विस्तार के साथ विवेचन हो चुका है। अब ये पांचवा स्कंद प्रारंभ हो रहा है, हो चुका है। जिस सृष्टि में हम लोग रह रहे हैं, यह बात ठीक है कि इसके कारण में परमात्मा है, परंतु फिर भी परमात्मा की उपासना को हम किन किन रूपों में करें। अव्यक्त रूप से परमात्मा सब जगह विराजमान है, तथापि कहीं कहीं कोई न कोई हमारी उपासना का आधार होना चाहिए, और उस आधार के लिए हमारी कोई न कोई साधना चाहिए। यह बात पांचवें स्कंद में आती है। साथ ही साथ प्रतिक्षण विनाश की ओर जाने वाली सृष्टि में हम लोग कुछ स्थिरता देख रहे हैं, ये फिर भी टिकी हुई है, तो किसके आधार पर टिकी हुई है? इसमें परब्रह्म परमात्मा का क्या वैलक्षण्य है, यह बात भी पांचवें स्कंद में हम देखेंगे। यदि परमात्मा को ये जीव प्राप्त हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि परमात्मा को प्राप्त नहीं हुआ तो उसको इस सृष्टि में कहां कहां तक चक्र लगाने पड़ेंगे, इन सब बातों का विवेचन पांचवें स्कंद में मिलेगा। हम लोग बहुत छोटी सी सृष्टि में उलझ जाते हैं। एक देश है, उसमें एक प्रांत है, प्रांतों में भी एक नगर है, नगर का एक मोहल्ला है, मोहल्ले की एक सड़क है, और उस सड़क के ऊपर एक मकान है, और उस एक मकान का भी बहुत थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास है। उतने में हम लोग मोह करके अटक जाते हैं, तो इतना विशाल संसार जिसमें सर्वत्र परमात्मा विराजमान, हमारा स्वरूप विराजमान, अपनी व्यापकता को हम भूल करके कहां छोटी सी जगह आकर हम अटक गए। ऐसे अटकाव को समझा करके और दूर करा देने वाला ये पांचवां स्कंद है। कल की कथा में ऋषभ देव जी का चरित्र हमारे सामने आया, कैसे विलक्षण वे ऋषभ देव जी महाराज थे। राज्य का त्याग किए, जंगलों में रहे, तरह तरह से सिद्धियां उनके पास आईं, परंतु इनको योगांतराय समझकर उन सिद्धियों का कोई उपयोग नहीं किया, और वे चिरकाल से सोए हुए इस जगत को जगाकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। उन्हीं ऋषभदेव जी महाराज का पुत्र है भरत, 100 बेटों में जो सबसे बड़े हैं, वे बड़े महाभागवत थे। अपने पिता की आज्ञा से अवनीतल परिपालनाय, इस पृथ्वी के परिपालन के लिए वे राजा बने। विश्वरूप की पुत्री पंचजनी के साथ उनका विवाह हुआ और उनके 5 सुपुत्र हुए। कैसा विलक्षण वो भरत का जीवन था कि इस कारण ये अजनाब वर्ष था, वो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वह भरत बहुत शास्त्रों का जानने वाला था और अपने प्रजा को भी धर्म के अंदर लगाने वाला था। धर्म में वही लगा सकता है जो स्वधर्मम अनुवर्तमान है, अपने धर्म का पहले स्वयं पालन करे। तो वह अपने धर्म का पालन कर रहा था, करता था, बड़े बड़े यज्ञ किए और उन यज्ञों का फल भगवान को अर्पित कर देता था। कारण कि यज्ञ के रूप में भगवान है, सर्व देवता लिंगानाम, यज्ञ में जिन जिन देवताओं को जो जो हवि दी जाती है वो देवता भी भगवान साक्षात कर्तरी, वे सब कुछ कर दे धरने वाले हैं। ऐसे भगवान के विषय में उसने यही धारणा कर रखी थी, अतएव उसके हृदय से सारे मैल दूर हो चुके थे, और बराबर भगवान के ध्यान करते रहने के कारण उनकी भक्ति अहर्निश बढ़ती ही चली गई थी। बहुत लंबे समय तक शासन करने के बाद उनका राज्य से वैराग्य हो गया। सत्य है हे परीक्षित, जो व्यक्ति धर्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है उसको वैराग्य स्वाभाविक हो ही जाता है। स्वतनयेभ्यो रिक्थम पितृपैतामहं यथा दायं विभज्य, अपने पुत्रों को अपने पिता प्रपितामह से चला आ रहा राज्य था वो सब सुपुर्द कर दिया और स्वयं हरिहर क्षेत्र में चले गए, जहां भगवान आज भी अपने भक्तों को दर्शन दिया करते हैं। भगवान वहां पर विराजमान रहते हैं। वहां चक्र नदी नाम की एक नदी बहती है, वह नदी सर्वतः पवित्री करोति, उस क्षेत्र को सब तरह सब ओर से पवित्र करती है। उस आश्रम में वो बैठे हुए थे, वे तरह तरह से सामग्रियां लाकर भगवान की आराधना करते थे। भगवान की पूजा करते करते इतने भगवान के प्रेम में डूब जाते थे तो कभी कभी उनकी पूजा छूट जाती थी, माला छूट जाती थी और औत्कंठ्य प्रवृत्त प्रणय वाष्प निरुद्धावलोकनयन है गदगद हो जाते थे। उत्कंठा के कारण नेत्रों में जल आने लग जाता था, सब कुछ भूल जाया करते थे। इस प्रकार से वे भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे। भगवान सूर्य की उपासना करते थे। आह, जो सारे संसार का सम्राट था वो आज अपने सिर के ऊपर जटाओं को धारण किया हुआ है, जटा कलापेन विरोचमान है, उससे कितनी दिव्य उसकी शोभा थी। भगवान के व्रत के अंदर चले जाने वाले लोग ऐसे ही मृगचर्म वगैरह पहन करके और अपने मन को भीतर भगवान के प्रेम जल से धोकर और बाहर अपने शरीर को पवित्र जल से धोकर जब भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी बड़ी निराली शोभा होती है। सूर्य भगवान की उपासना करते हुए वे कहा करते थे कि हे सूर्य भगवान, आप समस्त प्राणियों के कर्मों को भी जानते हैं और उनको क्या फल मिलना चाहिए ये भी जानते हैं। मनसेदम जजान, आपके संकल्प से ये संसार बनता है और आप अपनी चित्त शक्ति से ही संसार में प्रवेश करते हैं, निवेश रखते हैं अपना, और विषय लोलुप जीवों को आप बराबर देखते रहते हैं, आप ही एकमात्र हमारी गति है। ऐसी उनकी उपासना चलती थी। एक बार की बात है, वे अपना नित्य नियम पूरा करने के लिए उस नदी के किनारे गए हुए थे। ब्रह्माक्षरम अभिग्रणान है, वे भगवान के नाम का जप कर रहे थे। उसी समय में एक प्यासी हिरणी आई, बहुत प्यासी थी, वो गर्भवती भी थी और वो हिरणी बिचारी अपने सारे समुदाय से छूटकर जब वो नदी के किनारे आई, जो ही वो झुक करके पानी पीना ही चाहती थी त्यों ही उसने एक बहुत बड़ा सिंह का नाद सुना। वो घबराई, लोक भयंकर है, वो नाद इतना था कि सब जगह भय छा गया। वो इधर उधर देखने लगी, चकित निरीक्षणा, उसकी आंखें चकित हो गई और इधर उधर देख करके उसने जोर से छलांग लगाई अपने प्राण रक्षा के लिए, कहीं सिंह आकर मुझे न खा जाए। जो ही उसने छलांग लगाया त्यों ही उसके पेट में छोटा बालक वो बाहर आ गया और वह उस नदी के प्रवाह में बहने लगा और वो नदी के उस पार जाकर जोर से दौड़ी दौड़ी किसी एक गुफा में चली गई और वहां जाकर वो मर गई। अब वो छोटा सा अमृत बालक भगवान के इस काल चक्र में बहता हुआ, जल में बहता हुआ, जो ही उस भरत राजर्षि भरत के सामने आया, तत्काल बड़ी कृपा करके उसको पानी से बाहर निकाला और ला करके अपने आश्रम में रख दिया। वे राजर्षि भरत अब आश्रम में लाकर उसे बहुत प्यार करते थे। तत्पालन पोषण लालन प्रीणन अनुध्यानेन आत्मनियमः, जितने उनके नियम थे अब वो धीरे धीरे नियम कम होने लगे और वे उस बालक के पालन पोषण में ज्यादा समय लगाने लगे। वो विचार करते थे कि देखो ये मृग शावक माने मृग बालक काल चक्र से मेरे हाथ में आया है, भाई बंधुओं से बिछुड़ गया है, मेरी शरण में आया है,
मुझे ही अपना माँ बाप मान रहा है, मई अति विश्रब्ध है, मुझ पर इसने बहुत विश्वास कर रखा है, ये मत परायण है, इसलिए अपने शरण में आने वाले की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और मुझे इसका बहुत पालन पोषण करना चाहिए बड़े प्रेम के कारण, बड़े प्रेम से, क्यों कि स्वार्थानपि गुरुतरान उपेक्षन्ते, जो थोड़े भी जानकार पुरुष होते हैं वो दूसरे के लिए अपने स्वार्थों को भी छोड़ दिया करते हैं, तो मैं इसके पालन पोषण में यदि समय लगाता हूं तो यह मेरे लिए उचित ही है। इस प्रकार उस मृग बालक में उनका स्नेहानुबद्ध हृदय है, उनका हृदय स्नेह में बंध गया, यही राजर्षि भरत की गलती हुई, हृदय को उसने में बांध लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, परंतु अब ऐसा हो गया। जब कभी भी समिधा लेने के लिए जाते तो उस मृग बालक को अपने साथ में लेकर के जाते थे, और जब जंगल से वापस आते और देखते कि यह मृग बालक थक गया है तो उसको गोद में उठाते थे और फिर लाकर अपने आश्रम में रखते, वे भगवान का भजन करते थे तो अंतराले भी बीच बीच में उठ उठ करके अपने आश्रम की कुटिया के झरोके से उसे देखा करते थे। आस्ते स्वस्ति स्ताद वत्सते सर्वतः, अहो हमारा वत्स, हमारा ये बालक ठीक तो है, ये सदा ठीक रहे, ऐसी उनके मन में भावना पैदा होती थी। जब कभी भी चंचलता के कारण वो मृग बालक आश्रम को छोड़कर चला जाता था, उस समय में उनके मन में बड़ी उद्विग्नता छा जाती थी, वो मनी मन में दुखी होते और विचार करते कि ओहो ये मृग बालक क्या मेरी गलती से नाराज होकर मेरे आश्रम को छोड़कर चला गया है, अब उसकी क्या दशा होगी, क्या वो कुशल पूर्वक वापिस आश्रम में आ तो जाएगा, क्या भगवान के द्वारा रक्षित इस मृग बालक को मैं फिर देख तो लूंगा, कहीं उसको भेड़िया न खा जाए, दूसरे जानवर खा न जाए, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और अभी भी न मृगवधु न्यास है आगच्छति, वह हिरणी का एक धरोहर मेरे पास है, अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, मेरे पास आया नहीं, क्या वो वापस आएगा और अपने छोटे छोटे सींगों से मेरे पीठ में खुजाल करेगा, क्या अपने कोमल कोमल चरणों से इस पृथ्वी को वापस पवित्र करेगा, और खेल ही खेल में मैं जब उसके सामने झूठे ही आंख बंद करके समाधि का स्वांग करता था तो चकित चकित आगत्य, वो बड़ा चकित होकर के आता था और आकर के मेरी गोद में बैठ जाता था। कभी कभी मैं अपने हवन की सामग्री को लाकर रखता तो दूषिते वह आकर उसको झूठा करने लगता, तो मया उपालब्ध है, मैं उसको झिड़कता था तो भीत भीत है वो बड़ा भयभीत हो जाता था, ओहो क्या वो मृग बालक फिर मेरे पास आएगा, ओहो इस चंद्रमा ने जाने कौन सा पुण्य किया है कि इसके अंदर वो मेरा मृग बालक विराजमान है। हे चंद्रमा, तुम तो सारे संसार को शीतलता प्रदान करते हो, और हे चंद्रमा, आत्मद विश्लेष ज्वर दव दहन शिखा भी उपतप्यमान हृदय स्थल नलनीकम, मेरा हृदय अपने आत्मीय बालकों के त्याग करने पर जल गया था, उस जले हुए हृदय को इस मृग बालक ने शांत किया था, तुम उसको भी अपने पास में रख करके अब शीतल किरणों से क्या मुझे शांत नए ढंग से शांति पहुंचाना चाहते हो, बात क्या है। हे पृथ्वी, जहां जहां मृग के चरण गिरते हैं वो स्थल तुम्हारा पवित्र हो जाता है, इससे सूचित होता है कि यह पृथ्वी यज्ञ के लिए बहुत पवित्र है, क्या अपनी पवित्रता सूचित करने के लिए तुम हमारे मृग को ले गए। एवं अघटमान मनोरथा कुल हृदय है, ऐसे ऐसे वे मनोरथ किया करते थे, मन में सोचा करते थे। सच पूछा जाए तो परीक्षित, उनका प्रारब्ध के कारण से उस मृग बालक के साथ संयोग हुआ था, परंतु जाने क्या उनका उसके अंदर मोह पैदा हो गया कि योगारंभण तो विभ्रंशित है, वो अपने योग से भ्रष्ट हो गए, भगवान की आराधना में लगे थे, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि उस बालक के अंदर वे आसक्त हो गए। पाप प्राग परित्यक्त दुस्त्यद हृदया भी जातस्य जिन्होंने अपने हृदय से पैदा होने वाले, अपने शरीर से पैदा होने वाले दुस्त्यज पुत्रों का प्रेम छोड़ दिया था, और वे ही आज एक मृग बालक के लालन पालन के बहाने से उसमें आसक्त हो गए, ये उनके लिए बड़े दुख की बात थी। और अब उनका अंतिम समय आ गया, उस समय में उनका प्राण छूट रहा था, पास में ही वो मृग बालक बैठा हुआ था। तमेव अनुशोचनतम, वह भी लंबी लंबी श्वास ले करके उसी राजर्षि भरत के विषय में सोच रहा था, और इधर राजर्षि भरत भी मरते मरते सोच रहे थे कि मैं अब जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद इस मृग बालक का क्या होगा। तो ऐसे वो विचार कर रहे थे, तो विचार करते करते उनका शरीर छूट गया, और शरीर छूट जाने के बाद वह मृग शरीरम अवाप, मृग शरीर को प्राप्त हो गए। इतने बड़े राजर्षि, इतना बड़ा त्याग किए हुए और इतनी भगवान की भक्ति किए हुए भी थोड़ी सी गलती के कारण, एक मृग बालक में मोह रहने के कारण उनको मृग शरीर प्राप्त हुआ। परंतु साधना अक्षुण्ण रहती है, न मृत जन्मानुस्मृति ही इतरवत, और लोगों को जैसे मरने के बाद पिछले जीवन का स्मरण नहीं रहता है, ऐसे वो मृग नहीं बने थे, उनको पिछले जन्म की बात याद थी। मृग शरीर में आए हुए भी वो विचार करते थे कि ओहो भ्रष्टम बड़े, मैं तो बड़े अहो कष्टम भ्रष्टो हम, बड़े कष्ट की बात है, मैं कितने ऊंचे स्थान पर था और कैसा मैं भ्रष्ट हुआ, मनुष्य बना हुआ, मनुष्य में भी भगवान की भक्ति करने वाला था, एक तो संसार के विषयों का त्याग करने वाले मनुष्य कम, और उनमें भी भगवान के भक्त होने वाले कम, ऐसी जगह ऊपर पहुंच गया था, लेकिन फिर भी मैं एक मृग बालक के मुंह में फंस कर देखो मैंने मृग शरीर प्राप्त किया। बड़ा उनको कष्ट हुआ, और उन्होंने अपनी माँ से अलग रहना अच्छा समझा, अपने और मृग थे भाई बंधु उनसे अलग रहना अच्छा समझा, और चुपचाप निगूढ़ निर्वेद है, ऐसा उनके अंदर वैराग्य था मृग बने हुए उस राजर्षि भरत में, कि वो वैराग्य किसी को पता ही नहीं चला, और वो सबसे अलग होकर वे कालंजराज प्रत्याजगाम है, वो पुलस्त्य पुलाश्रम में आ गए, कालंजर में जन्म लिया था उन्होंने, और वापिस वे पुलस्त्य पुलाश्रम में आ गए। यहां पर वे सूखे पत्ते खाते थे, शुष्क पर्ण तृण विरुधा वर्तमान है, सूखे सूखे पत्ते खाते थे कि कहीं अब मैं अटक न जाऊं, कहीं खाने में न अटक जाऊं, किसी से बोलते बोलते न अटक जाऊं, क्योंकि संसार में फंसने के बहुत फंदे हैं, बहुत जगह ऐसी है जहां हम फिसल सकते हैं, इसलिए वो बड़े संयम से रहते थे, खाने पीने का संयम, बोलने चालने का संयम। तो जैसे दूध का दाजा हुआ छाछ को भी फूंक देकर के पीता है, इसी प्रकार से संगाच विषम उद्विग्न है, किसी के साथ आसक्ति न हो जाए इस बात से वो हरदम उद्विग्न रहा करते थे। और फिर कालम प्रतीक्षमाण है, अपने मृग शरीर के त्याग की प्रतीक्षा करते रहे, भाई समय तो किसी को छोड़ता नहीं है। इस प्रकार से नदी में उन्होंने स्नान किया, नदी में स्नान करके जब वो मृग बने हुए राजर्षि भरत बाहर आए, क्यों ही उनका वो मृग शरीर था वो छूट गया। राजर्षि भरत का मृग शरीर छूट गया, उसके बाद की कथा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। एक अंगिरा गोत्र में उत्पन्न होने वाले बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, मन का बुद्धि का इंद्रियों का निग्रह करने वाले थे, बड़े त्यागी और संतोषी वे ब्राह्मण देवता अपने सदाचार के द्वारा बड़े विख्यात थे। उनकी दो स्त्रियां थी, पहली स्त्री से 9 लड़के पैदा हुए और दूसरी छोटी स्त्री से एक कुमार और एक कुमारी पैदा हुई, एक कन्या और एक पुत्र पैदा हुए। तो इन दोनों में जो पुत्र थे वे राजर्षि प्रवर भरत ही थे, जो मृग शरीर को छोड़ने के बाद अब विप्रत्वम गतमाहु ब्राह्मण बनकर के यहां जन्म लिए हैं। यहां जन्म लेकर के भी उन्होंने आत्मीय लोगों के साथ कहीं संग न हो जाए, इस प्रकार से वे उद्विग्न रहते हुए भगवत कर्म बंद विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणारविंद युगलंबन सा विदधत। भगवान का स्मरण करने से सारे कर्म बंधन नष्ट होते हैं ऐसा विचार करके भगवान के अनुग्रह से पूर्व जन्म की स्मृति को बनाए हुए उन्मत्त की तरह से जड़ांध की तरह से बधिर की तरह से वे रहा करते थे। पिताजी ऐसा समझते थे कि हमारा बेटा बहुत भोला भाला है और हमारा बेटा कहीं पागल तो नहीं है। सब लोग उन्मादी समझते थे, प्रमादी उनको समझते थे। लेकिन ब्राह्मण का अपने पुत्र के अंदर बहुत स्नेह था, इसलिए उन्होंने विवाह से पूर्व जो कुछ संस्कार होते हैं वो संस्कार पूरे करवा दिए, उपनयन संस्कार करवा दिया, उसके बाद गायत्री का मंत्र दिया। और उसके बाद उनका तो यही मन था कि मैं सब प्रकार से इसको शिक्षा दे दूं, कारण कि पिता का ऐसा भाव होता ही है। तो छंदांश्य अध्यापयिष्यन् उनको कई प्रकार से वेद और ऋचाएं समझाने के लिए उन्होंने उपाय किए और वे भी उन विद्याओं को ग्रहण करने में उदासीन रहते थे। तो उनको शौचाचार की विद्या सिखाई, अध्ययन के नियम दिए, परंतु भरत का उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। समय आया, एक दिन पिताजी का शरीर शांत हो गया। पिता के शरीर शांत होने के बाद उनकी मां थी वो भी पतिलोक में चली गई। अब ये भरत, ब्राह्मण भरत अकेले रह गए। यूं तो उनके भाई तो थे ही, भाइयों ने भी बड़ा प्रयत्न किया कि ये हमारा छोटा भाई या तो योग्य हो जाए, और यदि योग्य नहीं होता है तो इसका भार हम नहीं निर्वाहित कर सकते। तो उन्होंने भी पढ़ाने का प्रयत्न किया, परंतु न पर विद्यायाम जड़मति। भाइयों ने देखा कि ये पढ़ तो सकता नहीं है, उन्होंने अध्यात्म विद्या में निष्णात उस ब्राह्मण भरत को कुछ भी नहीं समझा और वे अपने घर से निकल गए। सामान्य लोगों ने भरत को एक उन्मादी, पागल और जड़ और बधिर समझ करके अपने अपने खेतों में काम लेना चालू कर दिया। उस काम के बदले में कोई रोटी दे देता, जली हुई रोटी है, बासी रोटी है, जैसा भी मिलता उससे वे अपना निर्वाह करते रहते थे। सच पूछा जाए तो परीक्षित नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वात्मलाभादिगम है। वे ब्राह्मण भरत अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेने के कारण सब प्रकार से लाभ को प्राप्त हो चुके थे, सुख और दुख से वे ऊपर उठ चुके थे, देहाभिमान उनमें नहीं था। इस प्रकार से वे भरत जी चाहे जैसा खा लेते थे और फिर भी वे बड़े हृष्ट पुष्ट रहते थे। कितनी सर्दी पड़ो, कितनी गर्मी पड़ो, कितनी आंधियां चलो, कितनी बरसातें हो, उनके पास कोई विशेष कपड़ा नहीं रहता था और वे बड़े सुदृढ़ अंग वाले, जैसा भी मिल जाए उससे निर्वाह करने वाले थे। ऐसे संतोष के कारण उनके शरीर के ऊपर मिट्टी भी जम जाती थी तो भी महामणिरिव ऐसी उनकी कांति निकलती थी जैसे कोई महामणि हो, और अपने काम में लगे रहते थे। इस प्रकार से जब भाइयों ने देखा कि हमारे भाई को लोग अपने अपने खेतों में लगाते हैं तो वे अपने खेतों में उससे काम करवाए। केदार कर्मणि निरूपित है, क्यारियों को बनाने के अंदर उनको नियुक्त कर दिया, किंतु न समाम विषमाम न्यूनम अधिकम इति वेद। कौन सी क्यारी कहां सम है कहां विषम है इस बात की वे जानकारी नहीं रखते थे। जो काम बता दिया उतना ही काम कर लेते और इस प्रकार से वे खेतों में रहते थे। एक बार की बात है, एक शूद्रों का राजा था चोर। उसने अपने भद्रकाली के सामने प्रार्थना की कि मेरे लड़का होगा तो मैं एक पुरुष की बलि दूंगा। संयोग के कारण एक बार उनके लड़का हो भी गया और एक पुरुष को वे पकड़ लाए। रात्रि में वो पुरुष उन सब से आंख बचा करके निकल गया। अब वो शूद्र सामंत बहुत ही चिंता करने लगा, अपने साथियों के साथ चिंतित हुआ कि भाई अब कल भद्रकाली को पुरुष की बलि देनी थी और जिस पुरुष को हमने पकड़ा था वो तो यहां से चला गया है। तो उसके नौकरों ने जंगल में जाकर के उसका अन्वेषण किया, उसको खोजा। खोजते 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 रात्रि का समय था, खेत के अंदर ये जड़ भरत जी बैठे हुए थे ही, जाकर इन्हीं कोई पकड़ लाए और रस्सी से बांध करके और वे अपने सरदार को ले जाकर मुखिया को ले जाकर दे दिया। सब बड़े प्रसन्न हो गए, मुदा विकसित वदना, सबके मन में बड़ी मुस्कुराहट आई, सब प्रसन्न हो गए कि हमारा काम पूरा हो गया। आप दूसरे दिन उसको नहला दिला करके अच्छे कपड़े पहना करके उनका तिलक वगैरह करके और माला वगैरह पहना करके जो ही भद्रकाली के सामने ले गए। उस समय में वह शूद्र सामंत अपने भद्रकाली के सामने तरह तरह से प्रार्थना करने लगा कि हे काली, आपने हमारा काम पूरा किया है, आज हम आपका ये उपहार आपको देकर आपका काम पूरा कर रहे हैं। इस प्रकार से वे कहने लगे, प्रार्थना करने लगे। कहते हैं परीक्षित, जो व्यक्ति धन के घमंड के अंदर तरह तरह से पाप करने वाले होते हैं, वे रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति वाले पुरुष भगवान की कला को समझते नहीं है कि ये ब्राह्मण साक्षात भगवान की कला थे, ये सामान्य ब्राह्मण नहीं थे, ये भगवान के भक्त थे, बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, इस बात को उन्होंने पहचाना नहीं। साक्षात ब्रह्मर्षि सुतस्य, अरे इनका तो आपत्ति काल में भी वध नहीं करना चाहिए, फिर भी ये लोग निरपराध उस ब्राह्मण को भद्रकाली के वहां पर ले गए। और जो ही वो जो चोरों का पुरोहित था अपने हाथ में तलवार लिया हुआ, हाथ को ऊंचा करके और प्रहार करने ही वाला था कि उसी समय में उस मूर्ति से साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उसने उसके हाथ से तलवार छीन ली और इतना क्रोध करके कि इन सबको जीने का कोई अधिकार नहीं है, हाथ में तलवार लेकर जितने वाले लोग थे सबके गर्दनों को काटने लग गई। काटते काटते इतनी तेजी से काटा कि अपने उस तलवार के ऊपर सबके गर्दनों को वो गेंद के समान उछाल उछाल कर खेल रही थी। और स्व पार्षद ही सह जगाऊ ननर्त च बिहार च, भद्रकाली उस समय में अपने पार्षदों के साथ नाचने लगी, गाने लगी और इस प्रकार से भद्रकाली ने सबको पूरा कर दिया। देखो परीक्षित, महापुरुषों का कोई अपराध करता है उसका फल उसे मिल ही जाता है, लेकिन परीक्षित महापुरुषों की महिमा देखो। स्व सिरस छेदेन आपतितेपि, अपना सिर काटने का मौका था, अपना सिर कटने के उस वेला में भी जड़ भरत के मन में कोई चिंता नहीं थी। उसको मालूम था कि अभी हमको मारने के लिए ले जा रहे हैं, मारेंगे तो अभी मन में कोई भय नहीं। कारण क्या था कि विमुक्त देहाध्यात्म भाव सुदृढ़ रह ग्रंथि नाम, उनका देहात्म भाव मिट चुका था। माने देहाध्यास मिट जाने के बाद जब स्वरूप का ज्ञान होता है तब उनको देह बहुत दूर वस्तु मालूम देती है। ऐसे निर्वैर संत महापुरुष होते हैं, उनकी सदा भगवान रक्षा करते ही रहते हैं और उनके मन में संसार की विपत्ति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार की बात है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल भगवान के पास ब्रह्म विद्या के लिए सत्संग के लिए जा रहा था। वह एक पालकी में बैठा हुआ था, पालकी को ढोने वाले लोग कुछ थक गए थे, बीच में ही ये भरत जी मिल गए। देखा कि बहुत मोटा ताजा शरीर वाला है और युवा और युवक भी है और संघननांग है, केवल मोटा है इतनी बात नहीं, इसके अंग भी बड़े सुदृढ़ है। तो ये फालतू यहां पर बैठा हुआ है, इसको पालकी में जोत लिया जाए, आज्ञा मिल गई। तो पालकी ढोने वालों ने भरत को बुलाया और अपने पालकी के साथ जुतवा दिया। अब ब्राह्मण भरत तो अपने हिसाब से चलने वाले और वे जो पालकी के उठाने वाले वो अपने हिसाब से चलने वाले थे। अब वो इशु मात्रा व लोकानुगते एक बाण जितनी दूर होता है उतनी दूर की दृष्टि पर देख देख के चलते थे, ताकि कोई कीड़ी मकोड़ी कोई भी किसी प्रकार पैर के नीचे आकर मर न जाए। इसलिए कोई कहीं जंतु दिखता था तो वे अपने पैर को टेढ़ा करके चलते थे, इधर उधर पैर रख करके उन जंतुओं से बचा करके चलते थे। ऐसा चलने से उसकी पालकी हिलती थी तो रहुगण बोला, अरे भाई क्या बात है, सही ढंग से क्यों नहीं चलते हो, ये हमारी पालकी हिलती क्यों है। राजा के वचनों को सुना तो जितने वे बिचारे उठाने वाले कहार लोग थे, उन्होंने देखा कि ज्यादा राजा कुपित होगा तो दंड देगा, तो उन्होंने निवेदन किया, महाराज हम तो सही सही चल रहे हैं, ये अभी नया नया जो आया है आदमी ये सही नहीं चल रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। अयम अधुनैव नियुक्त है अपि न द्रुतम रजति, एक तो ये जल्दी नहीं चलता है और एक ये सही ढंग से नहीं चलता है, इसलिए हम इसके साथ चलने में पार नहीं पा सकते, चलने में ये गलती करता है, हम गलती नहीं कर रहे। राजा ने देखा कि कहीं एक के संसर्ग से दूसरे लोग खराब न हो जाए, तो वो रहुगण जिसने बड़े बूढ़ों की उपासना भी की थी, थोड़ा क्रोध में आकर के, उसको मालूम नहीं कि मैं किसको क्या कह रहा हूं, उन्होंने ब्राह्मण भरत को कहना चालू किया कि ओ भाई बड़े दुख की बात है, बहुत दूर से तुम आए हो, बहुत देर से हमारी पालकी में जुते हुए हो, बेचारे बहुत दुबले पतले हो, बूढ़े भी हो गए हो, खाने के लिए तुमको मिला नहीं है, और पालकी को उठाते हुए तुम्हें कष्ट तो होगा ही, इस प्रकार से विप्रलब्ध है उपालंब दिया, माने मोटे को दुबला पतला बनाना, और अभी लगा है तो कहना तुम तो बहुत देर से थक गए हो ना, इस प्रकार से उनको उपालंब देते हुए बोलने लगा। कारण क्या था, परीक्षित वह अपने शरीर को ही मैं और मेरा मानने वाले थे, लेकिन ये ब्राह्मण भरत तो अहम मम इति अनाध्यारोपित मिथ्या प्रत्यय है, उनको तो कोई उपालंब दे अथवा कोई उनको धन्यवाद दे इससे उनके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, चुपचाप सुनते रहे। ब्रह्मभूत तूष्णीम शिविकाम पूर्ववत उवा है, वे चुपचाप सुनते रहे उसके उपालंब को, और उसी पालकी को वो उसी ढंग से ले जाते रहे। लेकिन फिर वो पालकी विषम हुई, जब कोई कीड़ी नाल आया, कोई जीव जंतु आए, तो फिर वो उन्होंने पैर इधर उधर रखा तो फिर वो पालकी हिली, पालकी हिली तो रहुगण अब तो वास्तविक रूप से कुपित हो गया और कहने लगा, क्यों भाई क्या बात है, आप क्यों भाई ब्राह्मण समझता क्यों, ये नए कहा तू समझा नहीं, जीवन मृतो तू जीते जी मरना चाहता है, राजा के शासन का पालन नहीं कर रहा है, तेरे जैसे प्रमादियों की तो आप कोई न कोई चिकित्सा करनी पड़ेगी, हमको दंड देना पड़ेगा। ऐसे वो बहुत असंबद्ध वाणी बोलने लगा, तो उस समय में विचार किया ब्राह्मण भरत ने कि देखो यदि इस राजा का इस समय में कोई इलाज नहीं किया तो ये और ज्यादा अपमान करेगा, हमारे अपमान से कोई अंतर होने वाला नहीं, लेकिन ये ऐसा अपमान करते करते इस राजा का नुकसान हो जाएगा, ये अपने आप को बड़ा भारी पंडित मान रहा है, तिरस्कृत अशेष भगवत प्रिय निकेतम, और ये ऐसे ही तिरस्कार करता करता भगवान के भक्तों का भी तिरस्कार करेगा। इसलिए वे ब्राह्मण भरत बड़े शांत भाव से मुस्कुराते हुए अभिमान रहित होकर और उस राजा से कहने लगे, तयोदितम व्यक्तम अभिप्रलब्धम, देखो आपने जो हमको फटकार से जो बातें कही है ये आपकी दृष्टि में सही हो सकती है, यदि भार नाम की वस्तु संसार में सच्ची है तो उसको उठाना भी सच्चा है, यदि मार्ग यदि सच्चा है तो उसके ऊपर चलना भी सच्चा है, परंतु आप विचार करोगे ये चीजें सच्ची है नहीं, शरीर का मोटापन, शरीर का पतलापन, शरीर की बीमारियां, शरीर की स्वस्थता, भूख और प्यास, ये इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, क्रोध, ये सब क्या है, इन सब का मेरे से कोई लेना देना नहीं, ये सब शरीर के साथ ही पैदा होती है, शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है, और इनमें भी अवस्थाएं एक जैसी नहीं रहती। तुम कहते हो कि तुम जीते हुए भी मर गए तो भाई ऐसी कोई संसार में वस्तु बताओ जो पैदा हुई और मरी ना हो, सांप जीते ही मरते हैं, इसलिए तुम हमको ये क्या डर दिखाते हो कि भाई तुम जीते जी मरना चाहते हो क्या? मरना तो एक दिन पड़ेगा ही, लेकिन ये न मैं पैदा हुआ हूं इसलिए न मैं मरने वाला हूं, जो पैदा हुआ है वो अवश्य मरेगा। नई बात क्या हो गई? तुम कहते हो कि मैं राजा हूं, तो भाई ये राजापना यदि सत्य है तो बात अलग है, नहीं तो मैं तो सत्य मानता नहीं हूं। ये तुम राजा हो हम प्रजा है, तुम स्वामी हो हम सेवक है, ये जो भाव है केवल व्यवहार तक काम आता है, परमार्थ दृष्टि से ये बात सत्य नहीं है। कौन स्वामी कौन सेवक कौन प्रजा कौन राजा? फिर भी यदि आपको सत्य दिखता हो तो बताओ अब मैं आपके लिए क्या करूं? आप कह रहे हो कि तुम बड़े उन्मादी हो, यदि वास्तव में मैं उन्मादी ही हूं, मैं स्वयं उन्मादी ही हूं, तो फिर मेरी चिकित्सा कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि सूर्य जैसे प्रकाश से अलग नहीं हो सकता, ऐसे मैं उन्माद से अलग कैसे होऊंगा? मेरा स्वरूप ही उन्मादी होगा तो फिर उन्माद का तो त्याग कर नहीं सकता हूं, फिर तुम्हारी की हुई चिकित्सा बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। बात क्या है जरा विचार करो। एतावद अनुवाद परिभाषया, जब इस प्रकार से उस ब्राह्मण भरत ने ये बात कही, तब वो राजा बहुत ध्यान से इस बात को सुन रहा था, तो वह उसी समय में अपनी पालकी से नीचे कूद गया। नीचे कूद करके अपने सामने उस ब्राह्मण को देखा, हृदय ग्रंथि मोचनम, अरे इससे तो राजा के हृदय का संदेह दूर हो रहा था, इसलिए इनके वचनों को समझने के लिए नीचे कूद करके वह तत्काल उनके चरणों में गिर गया, और चरणों में गिर करके आंखों में जल लिया हुआ बेचारा घबराते हुए पूछने लगा, कस्त्वाम निगूढ़श्चरसी द्विजानाम बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूत कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्ल। ओहो, आप ये अवधूत बने हुए ब्राह्मण का ये चिन्ह धारण किए हुए यज्ञोपवीत धारण किए हुए अपने आप को छिपाए हुए कौन महापुरुष हैं? कहीं आप वे कपिल मुनि तो नहीं है जिनके पास मैं सत्संग करने के लिए जा रहा हूं? ओहो, आज तो एक ब्राह्मण का बड़ा भारी मेरे द्वारा अपमान हो गया। मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं, ब्राह्मण के वे शंकर के त्रिशूल से डर नहीं, यमराज जी के दंड से डर नहीं, अग्नि से चंद्रमा से और वायु से, इनसे मुझे कोई डर नहीं है। एक ब्राह्मण का अपमान हो गया, इस बात का मुझे बड़ा भारी भय लग रहा है। तो बताइए आप कौन हैं? आपके वचनों को मैंने सुना है, तो उन वचनों को सुना है तो मेरे संदेह की गांठें खुल रही हैं। आप तो परमार्थ और असत, सत और असत दोनों की बात बता रहे हैं। महाराज, आपके वचनों को मेरा हृदय इतना दूषित है, पूरी रूप से पकड़ नहीं पाया है, और मैं योगेश्वरों के भी ईश्वर, बड़े बड़े सिद्धों के भी सिद्ध कपिल के पास यही पूछने जा रहा था कि संसार में हम लोगों को किसकी शरण लेनी चाहिए? क्या वे ही कपिल भगवान कृपा करने के लिए हमारे पास आए हैं? देखो, जो सत्संग में जाना चाहता है, ज्ञान लेना चाहता है, सच्ची जिज्ञासा होती है, उसको ज्ञान देने का काम भगवान के यहाँ है, भगवान उसको जैसे तैसे ज्ञान दिला ही देते हैं। तो क्या आप कपिल भगवान हैं? क्या आप हम लोगों के जीवन को देख करके और उसके ऊपर द्रवित होकर कृपालु होकर कुछ सिखाने के लिए ही आप आए हैं? महाराज, मैं तो गृहानुबंध है, घर गृहस्थ के चक्कर में ऐसा पड़ा रहा कि आपकी वाणी को पूरा नहीं समझ पाया हूं। आप कहते हैं कि ये दुनियादार सब व्यवहार तक सीमित है और व्यवहार सब झूठा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यवहार झूठा कैसे है। हम प्यास लगती है तो जल पीते हैं, प्यास दूर होती है, भोजन करते हैं तो भूख दूर होती है, कोई वस्तु से कोई वस्तु लेकर आता है, घड़े के अंदर जल लेकर आता है तो वो जल हमारे पास है, पहले जल दूर था फिर वो जल हमारे पास आया। ऐसी स्थिति में व्यवहार मार्ग है वो झूठा है, ये हमारे समझ में नहीं आया। आप कहते हो कि भाई व्यवहार का काम शरीर तक सीमित रहता है, व्यवहार का काम आत्मा तक नहीं पहुंचता तो इसमें भी हमारे संदेह है। चूल्हे के ऊपर एक भगोना रखा हुआ है, भगोने के अंदर जल है और उस जल के अंदर चावल रख दिए, तो आग ने भगोने के साथ संयोग किया, भगोने ने पानी के साथ संयोग किया और पानी के गर्म होने पर वो चावल गर्म होते ही है। इसी प्रकार से शरीर और इंद्रियों के साथ आत्मा का संयोग है तो शरीर पर आने वाले कष्ट आत्मा पर आएगा, इंद्रियों पर आने वाला कष्ट आत्मा पर आएगा। इसलिए ये व्यवहार मार्ग झूठा कहा है, सच्चा है, क्योंकि उसका आत्मा पर असर पड़ता है। आप कहते हो कि तुम काय बात के राजा, केवल व्यावहारिक जगत के राजा हो, पारमार्थिक राजा नहीं, लेकिन मेरा तो यहाँ पर बहुत हुक्म चलता है, शास्त्राभि गोप्ता नृपति प्रजानाम, मैं प्रजा का शासन कर रहा हूँ, इनकी रक्षा कर रहा हूँ और इनकी रक्षा करके अपने धर्म का पालन करके अच्युत भगवान की आराधना कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में ये पिष्ट पेषण क्यों है? हमारी बात तो बिल्कुल सच्ची है कि व्यवहार ठीक है, सत्य है, अतः आप व्यवहार को मिथ्या कैसे बता रहे हैं? हाँ, ये व्यवहार है तो मिथ्या, क्योंकि आपने कह दिया, मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ। महाराज, मैं एक बार फिर आपके चरणों में अपना मस्तक रख करके आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि आज मेरे द्वारा एक ब्राह्मण का अपमान हो गया, मुझे महाराज इससे आप क्षमा करके इस अपराध से मुक्त कर दीजिए और मेरी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को आप दूर कर दीजिए। अब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, जड़ भरत जी प्रसन्न होकर के कहने लगे कि भाई राजन, अको विदह को विदबाद वादान, तुम पंडिताई की सी बातें तो करते हो लेकिन तुम वास्तविक पंडित नहीं दिख रहे हो। जैसे भगवान ने चालू किया, सोचानन्व सोतस्व प्रज्ञावादांश भाष से, तुम प्रज्ञावाद को बाल बोल रहे हो लेकिन तुम वास्तव में अभी प्राज्ञ बने नहीं हो। ऐसे ही बोल रहे हैं जड़ भरत जी भी कि भाई तुम कोविदवाद वादान वदसी, तुम बड़े बड़े पंडितों के सिद्धांत को तो बोल रहे हो लेकिन हो तुम अकोविद, तुम अभी पंडित हो नहीं, क्योंकि इस व्यवहार को तात्विक दृष्टि से जब विचार करते हैं तो कोई उसको सत्य नहीं मानता है। व्यवहार का सत्य, व्यावहारिक सत्ता की सत्यता तभी तक प्रतीत होती है जब तक हमारे हृदय में भोगों का आदर होता है। और तो और राजन, तुम्हारा क्या कसूर, वेदों में भी यही बात आती है कि ये कर्म करो और ये फल मिलेगा, ये कर्म करो और ये फल मिलेगा, तो जिनको अभी तक गृहस्थ के सुख है, इन सुखों से वैराग्य नहीं हुआ है, तब तक वे इस तत्व की सत्यता को नहीं समझेंगे और व्यवहार को ही सत्य मानेंगे। तुमने कहा कि प्यास लगी, जल मिल गया तो झूठा कैसे व्यवहार? अरे जल मिल गया, प्यास तुम्हारी दूर हुई, लेकिन इसकी कोई न कोई सीमा है कि नहीं? ये भी कहीं तक रहेगी, आगे जाकर सदा के लिए थोड़ी रहेगी बात। देखो, संसार के सुखों में आसक्त रहने के कारण व्यवहार भी वैसा ही प्रतीत होता है। इसमें भी खास कारण तुमको बताता हूँ। देखो राजन, ये मन है, ये रजोगुण से युक्त होता है, तमोगुण से युक्त होता है और सत्वगुण से युक्त होता है, तब ज्ञानेन्द्रियों से कर्मेंद्रियों से कभी पुण्य करता है कभी पाप करता है, और ऐसे करने से उसके मन में विषयों की इच्छा पैदा होती है, और षोडश आत्मा और ये मन पांचों ज्ञानेन्द्रियों को, पांचों कर्मेंद्रियों को और पांचों प्राणों को और एक स्वयं, इस प्रकार से 16 का समुदाय होकर के ये बाहर भीतर विषयों में सब जगह दौड़ता रहता है, और फिर कहीं सुख मिलता है कहीं इसको दुख मिलता है, और इसी के साथ संपर्क किया हुआ जो क्षेत्रज्ञ है वो मन के साथ मिल जाता है, तब उसको भी मन के सुख दुख है वो अपने सुख दुख प्रतीत होते हैं, तभी तक ये व्यवहार सत्य की तरह प्रतीत होता है। और जब ये मन के साथ जुड़े नहीं क्षेत्रज्ञ, तब मन को अपने से अलग देखेगा, तब जैसे दीपक के अंदर घी नहीं रहता है तो दीपक शांत हो जाता है, उसी प्रकार से मन से अलग हुआ क्षेत्रज्ञ मन को विषय नहीं देता है तो मन भी वहां पर शांत हो जाता है, और मन शांत होता है तो जैसे जलती हुई दीपक की लो धुआं पैदा करती है और शांत हुई दीपक की लो शांत हो जाती है, ऐसे ही विषयों का सेवन करने वाला मन है वो हमको संसार प्रदान करता है। गुणानुरक्तम व्यसनाय जंतो और क्षेमाय नैर्गुण्य मथो मनस्यात्। और जब ये मन निर्विषयी होता है तब बड़ा शांत रहता है और इस क्षेत्र की को बड़ी शांति मिलती है। 11 इंद्रियां हैं, इनके साथ मिलकर के और ये जितने विषय हैं इनके अंदर भटकाता हुआ न जाने कितने रूपों में ये बदल जाता है। इसलिए क्षेत्रज्ञ को ये चाहिए, मन के मालिक को ये चाहिए कि वे अपने मन को टटोले और आविर हिता क्वापि तिरोहिताश्चय, मन की वृत्तियां कभी प्रकट होती है और कभी दष्ट होती है, इस बात को समझते रहे और स्वयं ज्योति, स्वयं का जो प्रकाश है जिसके द्वारा मन का ज्ञान होता है, उस प्रकाश में वो स्थित हो जाए। सच पूछा जाए तो राजन वो प्रकाश सामान्य नहीं है, इसी को ही वासुदेव बोलते हैं, इसी को ही भगवान बोलते हैं। जिस प्रकार ये वायु स्थावर जंगम सारे प्राणियों को जीवन देता है, इसी प्रकार से भगवान वासुदेवा क्षेत्रज्ञ है, आत्मा इदम अनुप्रविष्ट है। इसी प्रकार ये क्षेत्रज्ञ कह दो, वासुदेव कह दो, भगवान कह दो, आत्मा कह दो, ये सब जगह व्यापक है। लेकिन हे राजन, जब तक अज्ञान को दूर नहीं करोगे, ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे, आसक्ति का त्याग नहीं करोगे और पांचों इंद्रियों को बस में नहीं करोगे, तब तक इस तत्व का ज्ञान नहीं होगा और भ्रमति ये तावत जगत में भटकते ही रहना पड़ेगा। इसलिए संसार के अंदर संताप पैदा करने वाले इस मन के पीछे मुझे मत दौड़ो। मन के पीछे दौड़ोगे तो कभी सुखी बनाएगा, कभी दुखी बनाएगा। लोग कहते हैं क्या करें, वहां जाते हैं लेकिन मन नहीं लगता, तो मन के इतने गुलाम मत बनो और वहां अपने को अपनी दृष्टि से विचार करना चाहिए। देखो राजन, इस मन के पीछे चलोगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा भारी शत्रु है, ये मन ही है। इस मन को काबू में करना चाहो तो गुरोर हरे चरणोपासनाश्रह, कहते हैं आप भगवान की शरण में जाओ, गुरुजनों की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, वहां जाकर उनके वचनों की रगड़ से मन के ऊपर जो कालिमा आई है वो कालिमा दूर होगी और ये मन है ये अत्यंत स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। इसलिए मन से अलग अपने स्वरूप को देखने पर ये व्यवहार मिथ्या प्रतीत होगा और अपना स्वरूप है सत्य स्वरूप, वो सत्य प्रतीत होगा। रघुगुण कहते हैं महाराज, नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय नमो वधूत द्विज बंधुलिंग निगूढ नित्यानुभवाय तुभ्यं। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं, कितना दिव्य आपने ज्ञान दिया है। हे अवधूत, आप कोई केवल बाहर से ब्राह्मणों इतनी बात नहीं, ब्राह्मण के रूप में छिपे हुए आप कोई और दिव्य अवतार हो। जिस प्रकार से बुखार के संताप से कोई रोगी जल रहा है उस समय में कोई सद्वैद्य आकर उसे अमृत देता है, औषध देता है, तो उसको शांति मिलती है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर मैं बुद्धि कर देने के कारण हम लोग ऐसी बीमारी के अंदर तड़प रहे हैं, उसमें आपके वचन अमृत का काम कर रहे हैं। महाराज, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है, लेकिन फिर भी संत महात्मा जाने कब कब मिलेंगे। तो संतों के पास में जितनी चीज है, जो उनके पास है वो ले ही लेना चाहिए। इसलिए मैं अपने संदेह की निवृत्ति के लिए आपसे फिर कह रहा हूँ, महाराज और तरीके से आप हमको समझाओ कि व्यवहार मिथ्या क्यों है और आत्म तत्व इसमें सत्यता कहाँ तक है, या आप हमको और तरीके से समझाओ। और इस विषय में मेरे मन को बिल्कुल भ्रांति से रहित कर दो। अब वो दूसरे तरीके से समझाते हैं।